ओम शांति। अथ श्री भगवत गीता प्रथम अध्याय। तो कल हमने देखा था कि दुर्योधन क्या करता है, अपने गुरु के पास जाकर यह कहता है। आज देखेंगे वो क्या क्या कहता है। 3 से लेकर 11 तक ये सारे श्लोक एक साथ, जिसमें कहा है उसने, पश्येताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमुम व्यूढ़ाम दुपत पुत्रेन तव शिष्येन धीमता। वो अपने गुरु से कह रहा है, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र दृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की गई पांडवों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। इस सेना में बड़े बड़े धनुष वाले, युद्ध में भीम और अर्जुन के समान बहुत से शूरवीर है, जैसे सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद और धृष्टकेतु, चेतिकान तथा बलवान के शिराज पुरुजित कुंतीभोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव और पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तम औजा सुभद्रा पुत्र और अभिमन्यु और द्रौपदी के पांचों पुत्र ये सभी महारथी है। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारे पक्ष में भी जो जो प्रधान है उसको आप समझ लीजिए। आपके जानने के लिए मेरी सेना के जो जो सेनापति है उनको मैं कहता हूँ। एक तो स्वयं आप और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा तथा और भी बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्र अस्त्र युक्त मेरे लिए जीवन की आशा को भी त्यागने वाले सब के सब युद्ध में चतुर है। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। इसलिए सब मोर्चे पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सब के सब ही निस्संदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। तो ये दुर्योधन ने कहा अपने गुरु के पास जाकर। पश्येताम अर्थात पांडवों की वह सेना को देखकर। एक राजा के पास एक दिन एक कवि आता है और राजा की बहुत स्तुति करता है, राजा के लिए कविताएं गाता है। उस कविता में राजा का वर्णन इस तरह से करता है कि राजा एकदम खुश होता है। वो कहता है कि राजा जो है वो सूर्य के समान है, शब्द उसके पास बहुत है। कवि के पास तो महल बनाता है शब्दों के और प्रशंसा के, और राजा को बहुत खुश कर देता है। बहुत अच्छी अच्छी कविताएं सुनाता है जिसमें मनुष्य सितारे है, राजा सूर्य है, इस तरह की। तो राजा इतना खुश हो जाता है और उसको कहता है कि तुमने ये जो कविताएं सुनाई, मैं आज इतना खुश हूं कि तुम्हें 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं में तुम्हें भेंट करूंगा। तो कवि ने तो कभी सोचा नहीं था ऐसा होगा। तो वो घर जाता है इतना खुश, रात भर सो नहीं पाता है। रात भर सोचते रहता है क्या होगा, कैसे होगा, क्या करूंगा इतने स्वर्ण मुद्राओं का। तो योजनाएं बनाता है, महल बनाता है स्वप्न के। सुबह सुबह पहले ही राजमहल में पहुंच जाता है, क्योंकि राजा ने कहा था मैं तुम्हें ये सूर्योदय से पहले। तो सुबह सुबह पहुंच जाता है तो राजा उससे मिलते हैं और कहते हैं कहो कैसे आना हुआ। तो उसे आश्चर्य लगता है, वो कहता है कैसे आना हुआ, आपने ही तो कहा था कि 1,000 स्वर्ण मुद्राएं मैं तुम्हें दूंगा, इसलिए मैं आया हूं। तो राजा ने कहा तुमने मुझे शब्दों से खुश किया, मेरी महिमा गाकर मैंने भी तुम्हें शब्दों से खुश किया, हिसाब पूरा हुआ। यहां पर 5 बातें समझनी जैसी है। दुर्योधन अपने गुरु के पास जाता है और ये सारा बताता है। जैसे कल भी कहा था, दुर्योधन भले ही कितना ही बुरा आदमी हो पर उसमें भी कुछ खूबियां है, उसमें भी कुछ कुलीनता के लक्षण है। सबसे पहली बात, उसने अपनी बात की जो शुरुआत की है कहां से की है? एप्रिसिएशन से। कहां से शुरुआत की है? पांडवों की स्तुति से। और उसकी स्तुति झूठी नहीं है, चाटुकारिता नहीं है, शब्द केवल नहीं है, वास्तव में वो स्तुति कर रहा है। सबसे पहले उसने वर्णन किसका किया? ये नहीं कहा कि हे द्रोणाचार्य देखो मेरी सेना में क्या क्या है, वो नहीं कहा। क्या कहा? वो देखो, पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतिम चमुम, चमुम अर्थात सेना। ये देखो पांडवों की इस सेना को कितनी विराट है। प्युडाम द्रुपद पुत्रेन तव शिष्येन धीमता, वो कह रहा है वो सेना देखो, उसका सेनापति दृष्टद्युम्न है, धीमता बहुत बुद्धिमान है, वो बहुत इंटेलिजेंट है, उस सेना को देखो। तो एप्रिसिएशन अर्थात स्तुति, ये एक ऐसा गुण है कि जिसके पास यह कला है वो क्या हो जाता है? कल बाबा ने कहा था ना, ऐसे मीठे बनो कैसे? कि सब पूछे कि आप कहां से आए हो, किसकी संतान हो। द फॉरगॉटन आर्ट ऑफ एप्रिसिएशन, द फॉरगॉटन आर्ट ऑफ एप्रिसिएशन, इस पर कभी डॉक्टर हीना क्लास कराएंगे। टॉपिक, एप्रिशिएट कैसे करना, स्तुति कैसे की जाए, क्योंकि स्तुति करने के लिए हमें अपना अहं अहंकार थोड़ा सा नीचे करना होता है।
सामने वाले को आ जाए तो?
सामने वाले को क्या? यदि हम सच्चे दिल से स्तुति करते हैं उसका क्या हो रहा है वो दूसरा प्रश्न है, परंतु हमारे मन में उस व्यक्ति के प्रति जो कड़वाहट है वो किसी मात्रा में कम तो हो जाएगी। जैसे यदि हम एक दृश्य बनाएं, तो ऐसे एक या दो व्यक्ति होंगे या ज्यादा भी कि जिनके मन में, हमारे मन में इतनी कड़वाहट भरी हुई है कि हमने सब कर लिया परंतु उनके प्रति घृणा सूक्ष्म में है ही है, नफरत है ही है, और कारण भी बहुत सारे, क्योंकि काम ही हरकत ही शायद ऐसी करते होंगे, वो दूसरी बात है, परंतु ऐसा है। कैसे उनका क्या हो रहा है, उन्होंने क्या किया, वो दूसरी बात है। हम उनकी स्तुति इसलिए नहीं कर रहे कि हमें ये चाटुकारिता नहीं है, केवल झूठी प्रशंसा नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर उनके प्रति जो घृणा है, जो नफरत है, जो बीज है एक हेट्रेट का, सेटल्ड एंगर इज कॉल्ड हेट्रेट। हेट्रेट की परिभाषा क्या है? नफरत की, जो क्रोध जो सेटल हो गया है, क्योंकि क्रोध लंबा समय तक चला है, पालना की है हमने उस क्रोध की सिक और प्यार से, बहुत प्रेम से पालना की है, किसकी? क्रोध की। और उस क्रोध ने हेट्रेट का रूप, नफरत का रूप, घृणा का रूप, डिसलाइक का रूप, कि जो व्यक्ति आते ही अच्छा ही नहीं लगता है हमें, चेहरा देखते ही मूड ऑफ। कैसा है? कुछ आत्माएं तो होगी कुछ, अब क्या किया जाए? स्तुति वास्तविक एप्रिसिएशन करने के लिए, स्तुति करने के लिए सबसे पहले एकांत में बैठ के उस आत्मा के गुणों का चिंतन करना होता है। योग में बैठ के उस आत्मा को इमर्ज करना और देखना ये कितनी महान है। कल कहा था एक एक ब्राह्मण आत्मा कैसी है, तुम्हारी जाति निराली है, कितनी महान है, कितनी श्रेष्ठ है। तो दोनों ही भाव विलीन हो जाएंगे, यदि घृणा है तो भी, यदि आकर्षण है, काम का भाव है, विकार का भाव है वो भी। संबंध दो व्यक्तियों के बीच आकर्षण या विकर्षण, अत्यंत घृणा या अत्यंत मोह, ये दोनों ही खींचते हैं और आत्मा को विचलित करते हैं। इसके लिए उस आत्मा को ऐसे देखना कि ये कौन है, अमृत वेले नुमा श्याम के योग में उस आत्मा को इमर्ज करके देखना और उसमें क्या क्या अच्छाइयां है उसका चिंतन करना, उसका मनन करना, उससे बात करना योग की उस अशरीरी अवस्था में। क्योंकि वैसे हम करते हैं वो केवल चेतन मन तक रहता है, अवचेतन तक जाता ही नहीं थे। अवचेतन की गहराइयों में, अवचेतन की परतों में कहीं ना कहीं अज्ञात सी घृणा छिपी है, और वो घृणा, वो नफरत, वो डिसलाइक, वो हेट्रेट हमें उस आत्मा के प्रेजेंस मात्र से बेचैनी हमारे अंदर खड़ी उत्पन्न करती है। यदि ऊपर से कोई कहे तो हम कुछ नहीं कहेंगे, हम कहेंगे हमारा सबके प्रति शुभ भावना है, हम ऐसा ही कहते। कोई मानता है कोई ब्राह्मण कि वो कहे? कभी नहीं। हम तो कहते हम विश्व कल्याण करें, पर हमारे ही बाजू में जो बैठा है हम सोचते हैं ये अगर डिपार्टमेंट छोड़ के चला जाए तो बहुत अच्छा हो जाए, ये अगर दूसरे सेंटर पे चले जाए तो यहां शांति हो जाए। अप्रिसिएशन बहुत बड़ा गुण है। दुर्योधन धृष्टद्युम्न की स्तुति कर रहा है, शिष्येन धीमता विराटस्य सुयोधनो द्रुपदस्य महारथः। कितने सारे महारथी है उनको कह रहा है, इतने सारे महारथी है अपनी सेना में नहीं उनकी सेना में, शत्रु की भी स्तुति कर रहा है। चालू वो अपनी सेना से भी कर सकता था, परंतु चालू कहां से कर रहा है? हे आचार्य देखो उनकी सेना को, कितने महारथी है वहां पर, कितने श्रेष्ठ है वहां पर, अर्जुन है, भीम है, कितने सारे लोग हैं वहां पर, भीमश, सब सब महारथी उधर उस ओर है। युयुधानो विराटस्य द्रुपदस्य काशीराजस्य वीर्यवान, ऐसे महारथी उस सेना में है। तो सबसे पहली चीज जो सीखनी है यहां पर वो क्या है? स्तुति। परंतु स्तुति भी कैसी हो? सच्ची, हृदय से निकली हुई, झूठ ना हो उसमें। किसी को खुश करने के लिए नहीं कि उसकी स्तुति करो तो हम खुश हो जाएंगे, वो वाली स्तुति नहीं है। हृदय से निकली हुई प्रशंसा, स्तुति, एप्रिसिएशन, प्रेज, एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेज करना, डू नॉट टेक सोल्स फॉर ग्रांटेड। यदि किसी ने हमारी मदद की तो हम समझते हैं ये तो उसका फर्ज ही है, करना ही चाहिए उसने, उसका काम ही है ये। जो भी सेवाधारी भी आते हैं यहां उनको भी धन्यवाद। कौन देंगे? मधुबन वादे आए, सेवा की, मधुबन में सेवा की, समय निकाला, जो जो हमें अपने ज्ञान से सेंटर पर बहने हमारी जो पालना करती है उनको भी धन्यवाद। एक्नॉलेज देयर पार्ट, उनका जो पार्ट है, उनका जो कंट्रीब्यूशन है उसके प्रति, तो उनमें और अधिक करने की इच्छा जागृत होगी, और अधिक और अधिक और अधिक। कल शाम की क्लास दादी जान की, जगदम्बा भवन को याद किया। जिस जगदम्बा भवन जो बन रहा है उसके लिए अगर दादी मधुबन की भूमि में बैठकर इतने सारे विदेशी और देश और विदेशी ब्राह्मण आत्माओं के सामने ये कह दे, खुशी यदि पूछना है तो जगदम्बा भवन बनाने वालों से पूछो, तो उनमें कैसा उत्साह संचार कर जाएगा। डेट तो थी 28 जनवरी पर दादी ने कह दिया 18 जनवरी, उधर टेंशन चालू हो गया है। परंतु उसी के साथ कहा किसने, दादी ने कहा, कहां पर बैठकर कहा, मधुबन की भूमि में ओम शांति भवन में बैठकर, सुना नहीं कैसी दहाड़ लगाई शुरुआत नहीं। ना बाप मुझे छोड़ता है और ना मैं उसको छोड़ती हूं, वाक्य वाक्य महावाक्य है, शब्द शब्द अमृत है। स्तुति प्रशंसा एक्नॉलेजमेंट स्वीकार करना, हाँ ये तुम्हारी वजह से हुआ है, धन्यवाद तुमको भी, सबको धन्यवाद जो जो जीवन में आया, जिस जिसने जीवन में कुछ कुछ बदलाहट लाई उन सभी को धन्यवाद। ये पहला गुण। दूसरा सेल्फ कॉन्फिडेंस। दुर्योधन में सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत है, वो कहता है हमारी सेना अजय है, उनकी सेना की पराजय सुगम है, निश्चित है। कितना भयंकर सेल्फ कॉन्फिडेंस है अपनी विजय पर कि मेरी हार हो ही नहीं सकती है, जबकि वो अधर्म के पक्ष में खड़ा है, परंतु फिर भी उसमें क्या है, आत्मविश्वास है कि ये सेना अजय है। परंतु एक दोष भी है उसमें, वो सोचता है कि हमारे पास पितामह भीष्म है इसलिए हम अजय है। यहां पर अधीनता है उसकी किसी व्यक्ति पर, मनुष्य पर, वो तो उसको भूल ही चुका है उस सेना को कि वहां कौन खड़ा है। पांडवों के शिविर में स्वयं भगवान खड़ा है इसका उसे कोई ज्ञान नहीं है, परंतु फिर भी उसका आत्मविश्वास देखो। किस बात का आत्मविश्वास, अपनी विजय के लिए आत्मविश्वास। दुर्योधन जैसा व्यक्ति भी इतना आत्मविश्वासी है, इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस से भरा हुआ है, जबकि जानता है कितनी बार उसी को विराट के युद्ध में पांडवों ने एक अकेले अर्जुन ने सबको हरा दिया था, जब गंधर्वों ने उसको अपहरण किया था तब फिर पांडवों ने ही उसे बचाया था, कितनी बार पांडवों के द्वारा उसकी हार हो चुकी थी, और जब जब उसने पांडवों को हराया था वो झूठ और कपट से हराया था, ये भी उसे पता है। फिर भी होते हुए भी उसका आत्मविश्वास कितना है, एक अधर्मी व्यक्ति का आत्मविश्वास इतना है, तो हमारा आत्मविश्वास कितना होना चाहिए, जो कि धर्म के पक्ष में खड़े हैं, जिनके रथ का सारथी स्वयं भगवान है। हमें कितना नशा होना चाहिए जीत का। तो दूसरी जो बात है वो है आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। डिफिडेंस नहीं होना चाहिए, लॉस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस को अंग्रेजी में शब्द है डिफिडेंस। व्यक्ति डिफिडेंट हो जाता है, आत्मविश्वास साहसी हो जाता है उसका, जो कि अर्जुन के साथ हो गया आगे थोड़ी देर के बाद। है तो वो भी बहुत शक्तिशाली, परंतु एकदम लॉस ऑफ, टोटल लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस, शिथिल गात्र हो गया उसके, उसका जो गांडीव गिर गया, हाथ कपने लगे, वो सब कुछ हो गया। पर यहां पर दुर्योधन देखो कितना शक्तिशाली है। तो दूसरी जो धारणा है वो है आत्मविश्वास। कैसे बढ़ाएंगे, क्या करेंगे हरि भाई, जिससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाए, हम क्या करेंगे? ये काम कैसे? अपने अस्त्र शस्त्र को याद करना कि हमारे साथ कौन है। सबसे पहले तो हमारे रथ में कौन विराजमान है? जब अर्जुन और दुर्योधन दोनों पहुंचते हैं श्री कृष्ण के पास युद्ध से पहले मदद मांगने के लिए, क्योंकि शकुनी उधर से पट्टी पढ़ा के भेजता है, अरे तुम तो बिल्कुल मूर्ख हो, जब तक कृष्ण के पास तुम नहीं जाते हो, क्योंकि उसकी नाराई से ना जब तक तुमको नहीं मिलती तुम्हारी विजय नहीं हो सकती है। दिखाया है श्री कृष्ण सोए पड़े हुए, अर्जुन आता है, दुर्योधन पहले आ जाता है, उसके सिर के सिराने बैठ जाता है, अर्जुन बाद में आता है। परंतु जैसे श्री कृष्ण आंख खोलते सबसे पहले अर्जुन को देखते हैं, कहते पार्थ तुम कब आए? वो दुर्योधन कहता है पहले मैं आया हूं। अर्जुन को पार्थ कहते हैं, प्रिथा कुंती का एक नाम है। तो कहता है कि आप किस ओर से लड़ोगे, युद्ध होने वाला है। तो श्री कृष्ण कहते मैंने तो प्रतिज्ञा कर रखी है, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, एक तो तरफ मैं हूं, एक तरफ मेरी नारायणी सेना है, तुम दोनों में से जो चाहे वो मांग सकते हो। तो पहले कौन मांगेगा? तो दुर्योधन कहते क्योंकि मैं पहले आया हूं मैं पहले मांगूंगा। कृष्ण कहते हैं नहीं, अर्जुन छोटा है वो पहले मांगेगा। तो अर्जुन कहता है कि मुझे आपकी नारायणी सेना नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। और दुर्योधन अंदर ही अंदर इतना खुश हो जाता है, परंतु दिखाता है ओके ठीक है इट्स ओके, अब बची नारायणी सेना ही मैं ले लेता, और बड़ा खुशी खुशी से आ जाता है डांस करते हुए। वहां पर अर्जुन कृष्ण अर्जुन से एक प्रश्न पूछते हैं कि तुमने मुझे क्यों मांगा, मैं निहत्ता शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा। वो कहता है वासुदेव आप सारी दिशाओं को जानते हो, सारे मार्ग को जानते हो, और आप जैसा सारथी मुझे और कहीं त्रिभुवन में मिल नहीं सकता। वह सारथी जो सभी दिशाओं को जानता है, सभी मार्ग उसे पता है, आप मेरे रथ को कभी भी भटकाओगे नहीं। और युद्ध में सारा दारोमदार सारथी पर है। हमारा सारथी कौन है? स्वयं भगवान। जिस रथ का सारथी स्वयं भगवान है, क्या वो रथ कभी भटक सकता है? क्या वो जीवन रूपी रथ कभी भटक सकता है? सारे मार्ग उसको पता है, दिशाओं का ज्ञान उसके पास है, कभी नहीं भटक सकता। इसलिए सेकंड पॉइंट फिर से उसी प्रश्न पर आते, प्रश्न का उत्तर अब तक आया नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो दुर्योधन के पास है, हम ब्राह्मणों में वो कैसे आए? स्मृति से, अवेयरनेस से, याद से। कौन सी याद से? मैंने ये पहले भी किया है। कब किया था? कल्प को थोड़ा हटा दो, बार बार किया है, ये जरा ठीक है, बहुत बार किया है, बार बार किया है, 10 बार किया है, फॉर एग्जाम्पल 10 बार घुमा है कल, 10 बार किया है, तो ये 11वीं बार है, ये थोड़ा दिस इज थोड़ा पैलेटेबल है। मतलब कल्प कल्प मतलब एकदम बहुत ऊंची भाषा हो जाती है, हाथ में तो कुछ आना चाहिए। कई बार मैंने किया है, कई बार मेरी विजय हुई है, कई बार इस संस्कार को मैंने हराया, पुराना संस्कार, पुराना स्वभाव, पुरानी नेचर। स्मृति स्वरूप बन जाओ, तुम्हारा अनादि आदि और अंत भी स्मृति स्वरूप है, अव्यक्त वाणी, उसी से समर्थी आएगी। तो सबसे पहली विधि क्या है सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने की? स्मृति, याद करना बार बार कि ये जो संस्कार है या जो परिस्थिति है, ये कोई बहुत बड़ी परिस्थिति नहीं है, बहुत छोटी है, परिस्थिति से बड़ा मैं हूं। आई एम ग्रेटर देन ऑल द सर्कमस्टांसेस। ये इतनी मुझसे छोटी है परिस्थिति, ये संकल्प बहुत शक्तिशाली है। इस समस्या से बड़ा मैं हूं, समस्या बहुत छोटी है। तो स्मृति, और क्या करेंगे विठल भाई? आत्मविश्वास को कैसे बढ़ाएंगे? स्मृति से बार बार अभ्यास। आधी रात होती है, छोटा सा अर्जुन वहां रसोई के पास घूमने घूमते पहुंचता है और आवाज आती है रसोई से, क्या हो रहा है? तो वो अंदर देखता है, कौन? तो भीम बैठा हुआ है अंधेरे में और खा रहा है। तो वो कहता है, भीम तुम यहां? वो कहता है, धीरे बोलो, कोई सुन लेगा। तो कहता, क्या कर रहे हो? तो बोला, भोजन, और तुम भी खा लो थोड़ा सा, पर थोड़ा ही खाना, थोड़ा मतलब थोड़ा, ज्यादा मत खाना। तो अर्जुन पूछता है, इतनी अंधेरी रात में तुमको पता कैसे चलता है भोजन दिख कैसे रहा है? तो वहां भीम कहता है, अर्जुन आंखें जो है, हाथ जो है ना, उंगलियां, उसको भी आंखें होती है, मुंह तो वहीं के वहीं है पर उंगलियों को भी आंख होती है। अभ्यास अर्जुन, अभ्यास, अभ्यास अर्जुन, अभ्यास। और तभी अर्जुन वहां से निकलता है और आधी रात प्रैक्टिस चालू कर देता है। आधी रात को जब सारे शिष्य सोए हुए हैं, द्रोणाचार्य उठता है, बीच में से कहता है, इसकी ट्रेनिंग तो मैंने अभी तुम्हें दी ही नहीं, फिर तुम कैसे कर रहे हो? वो कहता है, इसका मार्गदर्शन मुझे भीम भैया ने किया है। अभ्यास अर्जुन, अभ्यास। तो क्या करना है? अभ्यास करना है। किस बात का अभ्यास? समान का अभ्यास। समान का, कौन से आत्मविश्वास बढ़ाने वाले समान है? मैं, कल्प कल्प की, मैं बार बार की, रिपीटेडली विजयी आत्मा हूं, आई एम अ विक्टोरियस सोल। और 5 साल पहले बोलता हूं और विजय जन्म सिद्ध अधिकार है, विजय गले की माला है, मैं ही विजय हुआ था। मैं, मेरी अगर विजय नहीं हुई तो किसकी विजय होगी? वो संसार के लोगों की विजय होगी जिनके पास भगवान का ही ज्ञान नहीं है, आत्मा परमात्मा को ही जानते नहीं, जीव जगत ईश्वर के बारे में जिनके पास कोई ज्ञान नहीं है, क्या उनकी विजय होगी? यहां भगवान सामने बैठकर हमें सिखा रहा है, पढ़ा रहा है, सच्ची गीता सुना रहा है। ये है गीता जो मैं सुना रहा हूं। तो क्या संसार के वो लोग जानेंगे जो शास्त्र पढ़ने वाले हैं? शास्त्रों का शास्त्र तो भगवान पढ़ा रहा है। अभ्यास, पहला स्मृति, फिर अभ्यास और फिर समान। और सत्य की जीत होती है। और दृढ़ता से अभ्यास करते रहना। और आत्मविश्वास कैसे बढ़े? मनन चिंतन करने से और अनुभव में लाकर और दूसरों को, दूसरों का अनुभव और जीवन कहानी। अगले संडे की मुरली, क्वेश्चन नंबर 3, जो पढ़े लिखे कम है वो कैसे सेवा करेंगे? अनुभव सुनाओ, दूसरों को कहानियां सुनाते रहो अपने अनुभव की, बस वो ही सेवा है। सबसे बड़े से बड़ी सेवा यही है। अनएजुकेटेड एंड एल्डर्स जो है, उनको क्या सेवा दी बाबा ने? अपना अनुभव की कहानियां सुनाते रहो, बस यही सेवा है। तो ये भी एक। और कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? सेल्फ कॉन्फिडेंस जिससे बढ़ जाए, यस आई कैन डू इट, ये जो है ना रिपीटेशन, अफर्मेशन बहुत जरूरी है। अफर्मेशन जो है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अफर्मेशन, लॉ ऑफ फेथ, लॉ ऑफ फेथ। फेथ हो अपने, विवेकानंद ने कभी कहा है, इफ यू हैव फेथ इन 33 crores of gods and goddesses, but if you have no faith in yourself, success is impossible. यदि तुम्हें 33 कोटी देवी देवताओं में विश्वास है पर 100 में विश्वास नहीं है, तुम्हारी विजय नहीं हो सकती। खुद पे विश्वास, faith. If you tell to the mountain, get up and get planted on the sea, and if you have faith in your heart, it shall obey you. जीसस के वचन है, यदि तुम इस पर्वत से कहो, ए पर्वत उठ और समुद्र में जागिर, और तुम्हें विश्वास है तुम्हारे अंदर, तो वो तुम्हारी बात मानेगा। बट ई ऑफ लिटिल फेथ, ए कम ईमान वालों, क्या तुम में इतना भी विश्वास नहीं? स्वयं में विश्वास, अपनी योग्यताओं का चिंतन करना, अपनी ही विशेषताओं का चिंतन करना, अपनी महानताओं को याद करना, अपनी स्पेशलिटीज को याद करना, बताने की बात नहीं है, दूसरों को याद करने की बात कह रहे हैं आप। खुद ही मनन करना कि मैंने ये किया था, ये तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। जब ये लोग, संसार के लोग, वो दशरथ मांझी इतनी पूरी चट्टान को ये कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? अब स्मृति दिलाना, याद कराना, उस अवचेतन में छिपी हुई शक्ति को जगाना, सुबह उठते ही पहला पावरफुल संकल्प करना, ये सारी चीजें करोगे तो आत्मविश्वास बढ़ेगा, जीत नजदीक आएगी, समीप आएगी। और जब हम बार बार जीतते हैं तो विश्वास और बढ़ता है, और बार बार हारते हैं तो विश्वास अपने आप और कम कम होते जाता है। फिर तो एक समय आता है लोग छोड़ ही देते हैं पुरुषार्थ, तो अपने बस की बात ही नहीं, जिसको बनना है बाप समान बने, ये हमारा काम नहीं है बाप समान बनना। ये अवस्था आ जाती है, बार बार पराजय जब होती है, और बार बार जिसकी विजय होती है, जो अभी फर्स्ट आया, फिफ्थ में फर्स्ट आया, सिक्स्थ में फर्स्ट आया, सेवेंथ में फर्स्ट आया, ऐसा स्टूडेंट जो होता है ना, वो बहुत उसकी आशा है, सबकी आशा होती है, और उसको भी लगता है मैं आऊंगा, सेकंड भी आ जाए तो दुखी हो जाते हैं घर पर वो और प्रयत्न करता है, और पढ़ाई करता है, क्योंकि क्यूम्युलेटिव इफेक्ट कहते हैं इसके, डॉर्मियन इफेक्ट। तो आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए याद करना, स्मृति करना, अभ्यास करना, बार बार रिपीट करना संकल्प को, आई जॉर्ज वॉशिंगटन विल बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। छोटा सा जॉर्ज वॉशिंगटन था, पैसे नहीं थे उसके पास, घंटी बजाता था क्लास में, एक क्लास जो होता है ना उसके बीच में, पीरियड के बीच में जो बेल बजती है वो, पर बजाते बजाते कहता था टन टन टन, आई जॉर्ज वॉशिंगटन विल बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, आई जॉर्ज वॉशिंगटन विल बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। बस यही उसका अंतर मन में यह गुंज चालू रहती थी, और वो बन गया, रिपीट करते गया, रिपीट करता गया, रिपीट करता गया, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर। यह दूसरा। तीसरा, दुर्योधन में एक चीज नहीं है, इनफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है। क्यों? क्योंकि वो स्तुति कर रहा है शत्रु की सेना की। जिस व्यक्ति में हीन ग्रंथि होती है वो कभी दूसरों की स्तुति नहीं कर सकता इस तरह से, जिस तरह से वो कर रहा है। उसमें आत्मविश्वास है, हीन भावना बिल्कुल नहीं है, अपने प्रति तो बिल्कुल नहीं है, वो उसको तो अपने जीत का नशा है। वो कहता है हम ही विजय, हमारी जो सेना है अजय है, इनविंसिबल, इसको कोई नहीं हरा सकता हमारी सेना को, वो सेना की हार सुगम है। ये कितना नशा है। तो उसको ये जो हीन ग्रंथि का भाव है, एक होता है सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, पर उसके अपोज में एक दूसरा है हीन भावना। ये जो हीन भावना है ये बहुत बहुत नुकसान करती है। दो प्रकार के व्यक्ति है, अगर अच्छे व्यक्ति, बुरे व्यक्ति। दुर्योधन बुरा व्यक्ति है फिर भी उसमें हीन भावना नहीं है। यदि कोई अच्छा व्यक्ति है, बहुत अच्छा, पर यदि उसमें हीन भावना है तो भी बार बार पराजय होगी, सेल्फ विक्टिमाइजेशन करेगा, प्लेइंग द विक्टिम कार्ड, खुद को नीचे समझेगा हमेशा। ये जो सेल्फ विक्टिमाइजेशन है एक ऐसा अवगुण है कि जितने भी सेंसिटिव लोग जो ज्यादा होते हैं उनमें यह बहुत होता है, मेरी वजह से हुआ, मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूं, ये जो हुआ ना तुम्हारे जीवन में, जो भी हो रहा है मेरे वजह से हो रहा है, बच्चे जो बिगड़ गए मेरी वजह से बिगड़े, खुद को दोषी ठहराना, हर चीज में खुद को दोषी ठहराना, सेल्फ विक्टिमाइजेशन। धनुष्यबाण जो ऐसा चलता है वो उल्टा, इधर मैं मेरी वजह से हो रहा है। ये जो हीनता के भाव है, हीन ग्रंथि जो है, न्यूनगंडता, इनफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, ये बहुत बड़ा शत्रु है। ये सेवा हमने कभी की नहीं और हमको आती भी नहीं, हमको आता ही नहीं है ये। अरे कोशिश तो करो। अरे हमको पहले ही पता है हम नहीं कर पाएंगे, कोशिश तो करो। नहीं किया था एक बार तो बहुत बुरा हाल हो गया था, खुद में कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं है, और हीनता के भाव है। जो भक्ति में बाबा कहते हैं तुम कितने हीनता के भाव थे, मैं ये हूं, ऐसा हूं, वैसा हूं, वो अभी भी ब्राह्मण बनने के बाद किसी दूसरे अर्थों में चल रहे हैं। इनफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, हीन ग्रंथि, ये यदि हट जाए तो व्यक्ति कॉन्फिडेंस से भरता है। हाँ वो नहीं, वो दूसरी बात है कि सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ना आ जाए बीच में, निमित्त भाव जिसको बाबा कहते हैं। पर निमित्त भाव अर्थात ये नहीं कि आप एकदम हीन बन जाओ। हीनता अवगुण है, दुर्गुण है। हीन व्यक्ति कभी भी ऊंचाइयों पर नहीं पहुंच सकता है, शिखर पर। इसके लिए स्वयं को देखना है, मेरे अंदर कहीं वो हीन भावना तो नहीं, कहीं ना कहीं ये ग्रंथि तो नहीं। महावीर ने निर्ग्रंथ समाधि की चर्चा की है, निर्ग्रंथ समाधि, सारी ग्रंथियां सारी गांठे जिसमें खुल गई है। ये जो चित्त में गांठे है, कॉम्प्लेक्सेस, सटल कॉम्प्लेक्सेस, इंट्रिकेट कॉम्प्लेक्सेस, जटिल गांठे है, उनको खोलते जाना अध्यात्म है, सरल हो जाओ। तो तीसरी बात, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, सेल्फ विक्टिमाइजेशन, ये जबरदस्त अवगुण है। आज बाबा ने कहा है साकार मूल्य में रावण जबरदस्त है। चौथी पॉइंट, अजम्पशन। यहां दुर्योधन एक अजम्पशन कर रहा है कि उनकी सेना की हार हो जाएगी, हमारी जीत हो जाएगी। एक उसने अजम्पशन किया है कि क्योंकि हमारी सेना में ये लोग हैं, तो ये थोड़े ज्यादा शक्तिशाली है, उनकी सेना में वो लोग हैं, परंतु भीष्म हमारे साथ है, उसका अजम्पशन है, अनुमान उसने लगाया है कि जीत हमारी है। इसमें एक सूक्ष्म साइकोलॉजी की जो बात है, मनोविज्ञान की, गीता एक्चुअली धर्मशास्त्र से ज्यादा मनोविज्ञान ज्यादा है। फर्स्ट काउंसिलिंग है ये ह्यूमैनिटी के इतिहास में, क्योंकि अर्जुन को स्पिरिचुअल क्राइसिस, साइकोलॉजिकल क्राइसिस हो गया है, इनडिसीजन की स्टेट में है। वहां पे फर्स्ट काउंसलर जो है, भक्ति में कहा जाता है, भक्ति या संसार में कहा जाता है, फर्स्ट साइको एनालिसिस जो किया गया है, कृष्ण ने किया है अर्जुन का। ये फ्राइड और कार्ल जंग तो अभी अभी आया है, सबसे पहला जो किया है वो इसने किया है, काउंसलिंग, फर्स्ट काउंसलिंग, कि जो बिल्कुल एकदम निराश हो गया और उसमें एकदम प्राण भर दिए और खड़ा हो गया वापस, वो कितना जबरदस्त काउंसलिंग होगा उसका। गॉड इज द सुप्रीम काउंसलर, सबसे बड़ा कंसल्टेंट काउंसलर कौन है? गॉड। तो अनुमान, अर्जुन ने एक अनुमान लगाया है। अब इसमें भी एक सूक्ष्म साइकोलॉजिकल कारण यह है कि अर्जुन ये सोच रहा है कि उसको युद्ध का जो परिणाम है उसकी कोई खबर नहीं है, ठीक है, जो कुछ हो रहा है उसकी जो निष्पत्ति होने वाली है उसका कोई खबर नहीं है, रिजल्ट आफ्टर मैथ क्या होने वाला है उसको बिल्कुल पता नहीं है। उस आधार से वो ये बोल रहा है, यदि उसने थोड़ा सा भी सोचा होता थोड़े देर कि इस युद्ध का क्या परिणाम हो सकता है, उधर कौन लड़ रहा है, इधर कौन लड़ रहा है, श्री कृष्ण की तो वो बात ही नहीं करता है, वो कह रहा है कि इधर अभी भीष्म है और उधर जो है वो भीम है। अब वो भीम को ही देख रहा है बस, उसे अर्जुन का कोई ज्ञान ही नहीं है यहां पर, वो अर्जुन को तो भूल ही चुका है, उसका सारा ध्यान किस पर है? भीम कर, कम बुद्धि वाला पर ज्यादा शक्तिशाली जो है, सारा ध्यान वो उसी को शत्रु समझता है, सारी धुरी जैसे उसके ऊपर है, भीम पर है, ऐसा वो सोच रहा है, ये उसका अनुमान है। उसे वो अज्ञात तत्व, द अननोन फैक्टर, पता ही नहीं कि उस युद्ध में एक अर्जुन भी है, उसे ये भी पता नहीं है, भूल चुका है थोड़े समय के लिए कि उस युद्ध में कृष्ण भी है, उसे ये पता नहीं कि ऐसा कुछ अकस्मात होने वाला है, उसे ये पता नहीं है कि अननोन फोर्स आने वाला है, द थर्ड फोर्स बीच में प्रकट होने वाला है और सारा खेल पलट जाएगा, इसकी उसे जरा भी प्रतीति नहीं है। उसने अनुमान लगाया। मुरलियों में बहुत बार अनुमान की बीमारी के बारे में आता है, अर्थात क्या, कहां बोलते हैं बाबा, हम अनुमान लगा लेते हैं किस बात का, हमारी भी लड़ाई किसके साथ है? माया के साथ है। बाबा ने कहा है रावण को कम नहीं समझो, रावण को कम नहीं समझना, जबरदस्त है वो, इसके लिए तो तुम्हारा राज्य छीन ले जाता है, बड़े बड़े महारथियों को ले जाता है, रावण जबरदस्त है, विकार जबरदस्त है, देहभान जबरदस्त है। अपने शत्रु को कम आंकना, ये अनुमान लगाते हैं हम, और कौन से अनुमान लगाते हैं? हो जाए अनुमान से भी ये थोड़ा दूसरा है, हो जाएंगे दो नहीं, और वो संशय है, वो दूसरा है, और अनुमान अज्यूम कर लेना कि ऐसा ऐसा होगा। क्या क्या अज्यूम कर लेना कि हमने प्रैक्टिस बहुत की है, हो जाएगा। ऐसा नहीं है, बहुत प्रैक्टिस करने के बाद में भी लोग हारते हैं। कितनी भी प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस निरंतर होती रहे, थोड़े भी चूके कि गए। और समय पड़ा है, और कौन बना है, जितने भी हमारे मन में अजम्पशंस है, अनुमान हमने भर रखे है कि ये ऐसा ऐसा है, हो जाएगा, हो जाएगा, जो भी है वो सब अजम्पशंस है। ऐसा नहीं है, बहुत साधना चाहिए, बहुत प्रैक्टिस चाहिए, सतत निरंतर अभ्यास चाहिए। कोई भी चीज का अनुमान लगा के हम नहीं जी सकते। जैसे यहां उसने अनुमान लगा के वो थोड़ा निश्चिंत हो गया है दुर्योधन, पर इससे नहीं होगा, इसके लिए बाद में हार हुई उसकी। उसी के साथ जुड़ा हुआ पांचवा जो है, पांचवी बात, भ्रम, इल्यूजन, भ्रम। वो भ्रम में जी रहा है, उसको क्या लग रहा है, उधर भीम ही है सब कुछ, वो तो भूल ही चुका है बाकियों को, और वो सोच रहा है इधर ये है। उसे उनकी शक्तियों का कोई आभास ही नहीं, कोई चिंतन ही नहीं है। हम सोचते हैं कि हम ये कर रहे हैं, परंतु हमें निरंतर माया की क्या शक्ति है उसका भी चिंतन करना है। जगदीश भाई ने कहा है, भगवान को जानना कोटों में कोई और कोई में कोई जानता है, बहुत कठिन है, परंतु माया को जानना तो उससे भी कठिन है पहचानना। जो कोटों में कोई और कोई में कोई है, उनमें भी कोई कोई माया को जान सकता है, क्योंकि माया के हर दिन अगर हम देखें कितने अलग अलग रूप है, हमने जो सोचे भी नहीं थे वैसे रूप है उसके। सब ठीक है, अमृत वेला शक्तिशाली किया, ये यहां पर क्लास की, मुरली सुनी, सब कुछ किया, थोड़े देर के लिए 15-20 मिनट के लिए रूम में गए और वहीं माया आ गई। कैसे आई पता नहीं, कुछ देख लिया, कुछ सुन लिया, कुछ पढ़ लिया, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ हो गया और हलचल हो गई। मतलब हमने माया को पूरी तरह से जाना नहीं है, परखा नहीं है, पहचाना नहीं है, तब तो हार हो रही है ना। माया को वैसे ही देख लेना, एज इट इज, एज शी इज, जैसी वो है, तो फिर हमारी हार नहीं होगी। अनुमान और भ्रम, ये तो ये सारी बातें हो गई। अभी एक दृष्टि ऐतिहासिक, सबसे पहला कल हमने देखा था कृपाचार्य, कृपी और द्रोणाचार्य, ऐसे किसी के जन्म हो सकते हैं क्या? आज यहां बात की है ध्रुपद की, दृष्टद्युम्न की। दृष्टद्युम्न अगर नहीं होता, ये एक और अटपटी सी बात है, जगदीश भाई ने लिखा है कि तीन जो मुख्य लोग हैं उनकी मृत्यु पहले से ही निश्चित है। भीष्म की मृत्यु पहले से ही निश्चित है, श्रीकंडी द्वारा होगी। कर्ण की मृत्यु पहले से ही निश्चित है, अर्जुन द्वारा होगी, और कर्ण को भी पता है। द्रोणाचार्य की मृत्यु पहले से ही निश्चित है कि दृष्टद्युम्न द्वारा होगी। ये कैसी कहानी है? क्या ये कहानी सत्य हो सकती है? ये एक प्रश्न ऐतिहासिक। फिर थोड़ी इतिहास की बात है, ये द्रुपदी, द्रुपद और द्रुपद जब अपमानित होता है तो द्रौपदी और दृष्टद्युम्न दोनों यज्ञ से प्रकट होते हैं। क्या ऐसे किसी का जन्म हो सकता है? अगर ये दोनों ही पात्र वहां नहीं है तो पूरा महाभारत होगा ही नहीं। फिर दूसरे आ जाओ इधर, पांडव, पांचों पांडवों के जन्म कैसे है? क्या ये सत्य हो सकते हैं? सबसे पहले युधिष्ठिर, धर्मराज, संभव नहीं है। उसके बाद में भीम, वायु पुत्र है, अर्जुन इंद्र पुत्र है, नकुल सहदेव वो अश्विनी कुमार के पुत्र है, कर्ण सूर्य पुत्र है। ऐसा कोई व्यक्ति कभी पैदा हुआ है जिसमें कवच और कुंडल हो? ये सारे जो पांडवों के, पांडव के जो भी जन्म हुए हैं, पांडव को या फिर कौंतेय कहते हैं तीनों को, कुंती पुत्र तीन और माद्री के दो, नकुल सहदेव, तो ये इनके ये जो जन्म दिखाए क्या वास्तव में ऐसा कभी हुए थे या संभव है? विवेक तो कहता है असंभव है, अगर ये पांडव है ही नहीं तो ये युद्ध हुआ ही नहीं है। ये सारा लिखा हुआ है, उस समय जो भी ऋषि मुनि होंगे कोई युद्ध हुआ होगा, उसको फिर नाम दिया महाभारत। ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं नहीं हो सकती है। इसमें ये सारे जो वर्णन है बहुत सारा होगा, ये सभी पात्र क्या वास्तव में थे? इम्पॉसिबल। तिलक ने तो बहुत कड़ा इसके ऊपर ये किया है गीता रहस्य में, इट्स नॉट पॉसिबल। इवन विवेकानंद ने एक जगह बोला है, द मैन कृष्णा माइट हैव एग्जिस्टेड, शायद मुझे लगता है होगा, पर पता नहीं होगा कि नहीं। भक्ति भक्तों को बड़ी चोट लगती है ये सब बातें कहने से। तो ये जो भी ये जो सारे पात्र है वास्तव में फिगरेटिव सिंबॉलिक रूपक है, सारे एग्जाम्पल्स है, ये अभी है। इनको फिर अलग अलग ढंग से इस तरह बना दिया है, ऐसा नहीं हो सकता है। ये जिस तरह से उनका इधर इनका जन्म हो रहा है, उधर उनका जन्म हो रहा है, एक एक का जन्म कहानी पढ़ो तो आश्चर्य आश्चर्य है सारा, कि ऐसे कैसे हो गया ये। हाँ, रमणीकता है, मतलब क्या ये कैसे हो सकता है, एक एक का देखो। हाँ, किसकी? फेरी टेल जैसे होती है ना, टॉल टेल्स, फेरी टेल्स, सिंड्रेला, एलिस, ये उस तरह का जैसा है। पर भक्तों के सामने ये मत कहना, उनको बड़ी चोट लगेगी यहाँ पर। इसलिए ये कुछ ऐतिहासिक बातें। तो पांच चीजें बताई है, सबसे पहले बताया एप्रिसिएशन, स्तुति। चाहे कोई कितना भी बुरा व्यक्ति हो, उसमें कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा ही, कुछ ना कुछ तो होगा। एप्रिसिएशन, कुछ ना कुछ तो उसमें होगा, परंतु हम शायद देख नहीं पाते, हमारे पास वो शायद दृष्टि नहीं है। दूसरा बताया आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है। तीसरा बताया इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, यदि हम में है तो उस पर काम करना है, थोड़ा सा टाइम निकालना है। सेल्फ विक्टिमाइज करने का नेचर बन चुका है, काम करना है। ऐसा नहीं है, ड्रामा को थोड़ा याद करो, ड्रामा के पट्टे पर मजबूत रहो, कल कहा था। तीसरा बताया अजम्पशंस एंड इल्यूजन्स, हम एक अजम्पशंस एंड इल्यूजन्स, हम अज्यूम करते हैं चीजों को और इल्यूजन में जीते हैं, एक मीठे भ्रम में जीते हैं, शायद सत्यता वैसी है ही नहीं, सत्यता कुछ और है, और हम देख ही नहीं पाते क्योंकि हम उस व्यू चक्र में वहां पर हम फंसे हुए। उससे थोड़ा हम बाहर अगर निकले, जैसे किसी एक व्यक्ति के साथ, यहाँ पे दुर्योधन को भ्रम है, बहुत ज्यादा विश्वास है, किस पर? ये भीष्मा पर। और भीष्मा ने तो पहले ही कह दिया है कि मैं पांचों पांडवों में से किसी को ही नहीं मारूंगा, और जब तक मैं हूं ये कर्ण बिल्कुल नहीं आएगा, आफ्टर माई डेथ कर्ण आ सकता है, तब तक नहीं। ऐसे पर उसको विश्वास है, या डिपेंडेंसी है, अधीनता, बाबा जिसको कहते हैं ना, दूसरों पर अधीनता, ये भी उसका एक भ्रम है। दूसरों की शक्ति पर ज्यादा विश्वास करना, जो कि भगवान नहीं मनुष्य है, ये भ्रम है। ये समझ लेना कि ये मुझे काम आएगा, अटैचमेंट भी है इसमें। यहां कर्ण का भी नाम आया है, कर्ण भी एक रहस्यमय पात्र है, उसकी हम चर्चा आगे करेंगे। परंतु वो एक बार उपकार क्या कर दिया दुर्योधन ने, पूरा जीवन ही उसके चरणों में रख दिया। किसी ने मदद क्या कर दी मधुवन में पहुंचने के लिए, किसी ने चलो ज्ञान दे दिया, बहुत अच्छी बात है, किसी बहन जी ने ज्ञान दे दिया, पर वो भी तो निमित्त थी ना, अब उसी के पीछे पड़े रहना थोड़ी ना है। हाँ, मतलब वो जो सारे नए नए संबंध तैयार करके रख देते हैं, ये सब अधीनता है, ये कर्ण की जैसी स्थिति है। अर्जुन, कृष्ण उसको बताता है, बहुत सुंदर वाक्य है, युद्ध से पहले कृष्ण कर्ण को लेके जाता है और उसको बताता है कि अब मैं बताऊंगा तुमको तुम कौन हो। वो चरणों में गिरता है, कहते हैं वासुदेव मुझे अपना परिचय कराओ, मैं कौन हूं इसका मुझे परिचय कराओ। हम भी ये प्रश्न बहुत अच्छा है, बाबा के सामने, बाबा मैं कौन हूं मुझे अपना परिचय कराओ। कितना अच्छा वाक्य है, बाबा मैं कौन हूं मुझे मेरा परिचय कराओ। फिर बाबा बताएंगे, अरे तुम देखो देवता, ये हो तुम। तो वो एक वाक्य मुझे बहुत अच्छा लगता है जो कर्ण कृष्ण से कहता है कि हे वासुदेव मुझे अपना खुद का परिचय कराओ। वो उसको कहता है कि तुम ये हो, बताता है तुम क्यों दुर्योधन के पक्ष में लड़ रहे हो, अधर्म का पक्ष है। कर्ण कहता है मैं जानता हूं मैं अधर्म के पक्ष हूं, मैं ये भी जानता हूं कि दुर्योधन ने जो कुछ किया सब गलत है, पर मैं क्या करूं, बंधा हुआ हूं, ऋणी हूं। पर कृष्ण ये भी कहते हैं कि तुम कब तक उस ऋण के पीछे अपना जीवन बर्बाद करोगे। वो कहते मैं ये सब बातों को नहीं जानता, हमारा संबंध धर्म का नहीं है, प्रेम का है दुर्योधन और मेरा। तो ऐसा नहीं कि किसी ने हमको ज्ञान में ला लिया, ठीक है उसके उपकार, धन्यवाद, स्तुति, एप्रिसिएशन, एक्नॉलेजमेंट, पर हाथ धो के उसके पीछे नहीं पड़ने रहना। हाँ ठीक है उसने मधुबन में आने के लिए हमारी सहायता की, लेटर बिटर दिया था, चिट्ठी बिट्टी थी, अच्छा ठीक है मधुबन में जब आए उसने हमारी पालना की, बहुत अच्छी बात है। पर ऋणी ऐसा नहीं हो जाओ कि वो अगर गलत काम कर रहा है तो उसमें हम सहायक बन जाए। ये भी सीखने जैसी बात है यहां पर, ठीक है। अच्छा, ओम शांति।